Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aur wo kaisi honi chahiye ki agraya, nokili buddhi honi chahiye. सूक्ष्म होनी चाहिए, माने सूक्ष्म वस्तु को पकड़ने वाली होनी चाहिए और नुकीली होनी चाहिए. नुकीली माने पर्दे को फाड़ने वाली. सुई से आप मान लो यहां पर्दा पड़ा हुआ हो हमारे और आपके बीच में, तो सुई से उस पर्दे को फाड़ सकते हो, लेकिन एक मोटा मूसल ले लो, उस मूसल से आप उस पर्दे को नहीं फाड़ सकते, क्योंकि उसमें नोक नहीं है. ऐसे ये जो अज्ञान का पर्दा है, ये नौकीली बुद्धि के द्वारा तो फट जाता है. एकाग्र बुद्धि जिसको बोलते हैं, एकाग्र माने चारों तरफ से आवे और एक जगह आकर के केंद्रित हो जाए. कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंट बुद्धि जो होती है, दस बात सुनो लेकिन सुन करके एक बिंदु पर बुद्धि आ जाए, तो इसको बोलते हैं अग्रया बुद्धिया. और सूक्ष्म वस्तु हो वो ये, तो फिर वो सूक्ष्म बुद्धि हो गई. ऐसी बुद्धि जिनके पास है नारायण, उनके द्वारा ये मालूम होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है. एक श्रुति केनोपनिषद में आई है, उसका भी लोग उदाहरण देते हैं. और वो क्या है, यद मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते. मन जिसका मनन नहीं कर सकता है, यद मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता, ये नाहुर मनोमतम, जिसके द्वारा मन का मनन किया जाता है, उसको ही तुम ब्रह्म जानना. किसी और चीज की जिसकी लोग उपास्य मान करके ब्रह्म मानते हैं, वो ब्रह्म नहीं है. ये केनोपनिषद की वज्र श्रुतियों में से हैं. लोग जो हल्की बुद्धि वाले हैं ना, वो चकरा जाते हैं इसमें. तो फिर बोले इस पे क्या होगा, वहां तो कह रहे हैं कि मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और यहां कह रहे हैं कि मन से ही जाना जा सकता है. तो बोले मन से ही जाना जा सकता है विपरीत संस्कारों के द्वारा. आप आत्मा के बारे में संस्कार धारण करो, कैसा है आत्मा, और इसको ये नहीं कह दी ये तो संस्कार है. अगर बच्चा शुरू में ही सोच ले कि दो दुनी चार हम क्यों रटें, पहले हमको बताओ कि दो दुनी चार कैसे होता है, तो कभी उसे पहाड़ याद नहीं हो सकते हैं ना. तो पहले तो वो पहाड़ा रट लेगा, दो दुनी चार, दो तीन छह, दो चौपाट. फिर बाद में जब वो मल्टीप्लीकेशन समझ में आएगी, गुणा भाग समझ में आएगा, तब उनकी रीति भी उसे मालूम पड़ जाएगी, दो दुनी चार कैसे होती. तो इसी तरह से ये जितने संस्कार हैं शास्त्र के, पहले सच्चे मान करके इनको स्वीकार कर लेना चाहिए. इसमें ज्यादा तर्क वितर्क करोगे तो झगड़े में पड़ जाओगे. तो ये गुरु मुख से सुनने की जो बात होती है ना, वो होती है. ये पंजाबी लोग जो है ना, ये एक वचन बोलते हैं, सत वचन महाराज. गुरु जी ने कोई बात बोली, बोले सत वचन महाराज, माने जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है. लेकिन वो तो उनका लकब पड़ गया है, हर चीज के लिए सत वचन बोल देते हैं, धारण कुछ नहीं करते हैं. तो वचन के सत्य होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. वो वचन आप अपने जीवन में धारण कर लें, तुम ब्रह्म हो. अच्छा गुरुजी, मैं ब्रह्म हूं, तो कुछ तो अपने को ब्रह्मत्व का संस्कार मन में आने दो. मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं. करो विचार ऐसे. खाली मैं ब्रह्म हूं, एक तो महाराजा श्री ने तो ये भी कहा है कि अगर गुरु जो है अज्ञानी हो और शिष्य योग्य हो, योग्य माने उसमें उसके अंतःकरण की योग्यता इतनी हो कि वो तत्व को पकड़ सके, और गुरु अज्ञानी है लेकिन शास्त्र की बात बोलता है, तो गुरु जी भले ही अज्ञानी रह जाए लेकिन शिष्य जी ज्ञानी हो जाएंगे क्योंकि ये जो शास्त्र है इसमें अपनी शक्ति भी तो होती है, ऐसे थोड़े ही है कि खाली अक्षर लिखे हुए हैं किताब में, इनमें ऋषियों की शक्ति भरी हुई है इन शब्दों में, और ईश्वर की वाणी है इसलिए ईश्वर की शक्ति भरी हुई है। तो बिल्कुल 100% सही है, इस भावना से जब हम शास्त्र को ग्रहण करते हैं तो उसका संस्कार पड़ जाता है। तो मनसा इदम ब्रह्मैक रसम आप्तव्यम, एक रस ब्रह्म को मन में विपरीत संस्कारों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। अंतिम प्राप्ति का स्वरूप बताते हैं कि आत्मा एव न अन्यत अस्ति, बस आत्मा ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। देखो वेदांत जो है बहुत थोड़ा सा है, कल भी मैंने इशारा किया था। पहला तो यह है, पहला चरण कि मैं शरीर नहीं हूं, दृष्टा हूं, जीव हूं, ऐसा समझ लो मैं शरीर नहीं हूं जीव हूं। दूसरा चरण, मैं जीव नहीं हूं जीव साक्षी हूं। तीसरा चरण, मैं साक्षी ब्रह्म हूं, ब्रह्म माने सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान। और चौथा चरण, ब्रह्म के अतिरिक्त न कोई जीव है न जगत है न ईश्वर है न कुछ है, बस ब्रह्म ही ब्रह्म है। चार चरणों में पूरा वेदांत हो जाता है, इतना ही वेदांत है। सारी जिंदगी इसकी व्याख्या करते रहो और सुनते रहो। तो बोले क्यों व्याख्या करते हैं और क्यों सुनते हैं, कि इसलिए कि हमें संस्कार बन जाए। संस्कार यदि दृढ़ बन गया तो वो पुराना दृढ़ संस्कार उसको काट देगा, और ये जो शिकायत है कि हमको निष्ठा नहीं होती है, ये शिकायत खत्म हो जाएगी। और इसका कोई उपाय नहीं, आप भले ही चाहे एकांत में रहो चाहे घर में रहो, विचार अगर नहीं करोगे सुनोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। मनसै वेदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचनो, जब आपको आत्मा का स्वरूप ज्ञान होगा तो ये मालूम पड़ेगा कि उसमें किंचित भी भेद नहीं है। अच्छा, भेद जो है, भेद का ये भी पारिभाषिक शब्द है, भेद। भेद क्या है? अब ये चाबी है और ये पुस्तक है तो दोनों में भेद तो मालूम पड़ता है। ये लोहे की बनी हुई है, ये कागज की बनी हुई है, इसका आकार कुछ है, इसका आकार कुछ है, इसकी उपयोगिता कुछ है, इसकी उपयोगिता कुछ है। इन दोनों का भेद जानने वाला कौन है? बोले मैं हूं। तो आपके मन में एक दफे चाबी आती है और आपके मन में दूसरी बार पुस्तक आती है, तो मन दो है कि मन एक है? मन तो एक ही है ना, एक बार चाबी को ग्रहण करता है, एक बार पुस्तक को ग्रहण करता है। तो ये जो चाबी और पुस्तक का भेद है इसको वेदांत नहीं काटता है। वेदांत सिर्फ ये कहता है कि तुम्हारे मन में ये चाबी और पुस्तक का भेद आरोपित है। इसका नाम चाबी है, ये आपने सुना है। इसका काम ताला खोलना लगाना है, ये आपने देखा है, अनुभव किया है व्यवहार में। तो वो जो संस्कार पड़ गया है, उस संस्कार के कारण इस वृत्ति में जब ये चाबी आती है तो फौरन दूसरी बुद्धि कहती है कि इसका नाम चाबी है। सपने में भी चाबी दिखेगी तब भी वहां आपको यही ज्ञान होगा कि ये चाबी है और ये पुस्तक है। तो ये संस्कार जो है ये मन में मिथ्या है और मन आत्मा में मिथ्या है। मिथ्या माने अन्यथा प्रतीति, तो अब ये दूसरा पारिभाषिक शब्द बोल दिया मैंने। एक ही वस्तु जब दूसरे रूप में प्रतीत होती है तो उसको अन्यथा प्रतीति बोलते हैं। तो आत्मा ही असल में मन के रूप में प्रतीत होता है। आत्मा प्रतीति का विषय नहीं हो सकता, वो तो विषय ही है। जान जो चीज मालूम पड़ रही है उसको जानने वाला है, माने विषय करने वाला है, लेकिन विषय नहीं हो सकता है। तो किस रूप से विषय होता है कि अन्यथा रूप से होता है। जैसे रस्सी अन्यथा रूप से सांप के रूप में मालूम पड़ती है, ऐसे ही आत्मा जो है वो अन्यथा रूप से मन के रूप में मालूम पड़ता है, और मन अन्यथा रूप से शरीर के रूप में मालूम पड़ता है, और मन और शरीर अन्यथा रूप से प्रपंच के रूप में मालूम पड़ता है। ये सब अन्यथा प्रतीति ही है। तो मूल में किसकी अन्यथा प्रतीति है? आत्मा की। अन्यथा माने दूसरा, दूसरे के रूप में जब हम जानते हैं, तो अब ये चाबी जो मन में आ रही है, इसको दूसरे के रूप में आ रही है ना, तो चाबी का संस्कार और चाबी में अन्यपना का संस्कार, ये दोनों मन में पहले से भरे हुए हैं, इसलिए चाबी हमको दूसरी मालूम पड़ती है। इसलिए इनका भेद को काटने के लिए वेदांत नहीं है कि चाबी और पुस्तक एक ही चीज है, नारायण, इसको व्यावहारिक भेद बोलते हैं। लेकिन इन दोनों का जो साक्षी है वो एक ही है, उसमें इनका भेद नहीं है। तो नेह नानास्ति किंचन, इस आत्मा में साक्षी में कोई भेद नहीं है, और अधिष्ठान में भी कोई भेद नहीं है। अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई थी, एक आदमी उधर से निकला, उसने कहा अरे सांप है भागो यहां से, दूसरा आदमी निकला उसको सांप नहीं मालूम पड़ा, उसको माला मालूम पड़ी, वो जरा लोभी आदमी था, उसने कहा लगता है किसी की माला गिर गई है, उठा लूं तो अच्छा है बिक जाएगी। और जो डरपोक था उसको सांप मालूम पड़ता था, और जो डरपोक भी नहीं था और लोभी भी नहीं था, उसने कहा कि तो किसी के डंडा गिर गया है, या जमीन में दरार पड़ गई है, या पानी किसी ने औंधा दिया है, नारायण, उपेक्षा करके वो आगे निकल जाता है। तो हे, उपादे और उपेक्षा, ये तीन ही दृष्टि होती है। या तो हे माने सांप दिखेगा, और उपादे माने काम की चीज दिखेगी अर्थात माला दिख गई, अथवा उपेक्षा की चीज दिखेगी, भूछिद्र है या जल है, जलधारा है, उपेक्षा कर दो। तो ये तीन तीन है क्या? वो एक क्या चीज है? रस्सी, ज्ञान नहीं, अधिष्ठान की बात कर रहे हैं। तो उन तीनों का अधिष्ठान रस्सी है, और उस अधिष्ठान और उन तीनों का, इनका प्रकाशक माने सांप का भी, माला का भी, भूछिद्र का भी और रस्सी का भी, इन चारों चीजों का प्रकाशक साक्षी में होना है। तो जैसे रस्सी में ये तीनों विकल्प हैं, मिथ्या हैं, ऐसे ही रस्सी भी जो है वो मेरे में मिथ्या है। तो कहां पर भेद करोगे? नेह नानास्ति किंचन, न साक्षी में भेद है न अधिष्ठान में भेद है। साक्षी जब ब्रह्म रूप से कहा जाता है तब इसी को अधिष्ठान बोलते हैं। तो मनसै वेदमाप्तव्यम् नेह नानास्ति किंचनो मृत्यो समृत्युम गच्छति। अब यहां दोनों बात लगानी पड़ेंगी आपको, साक्षी और अधिष्ठान, इन दोनों की एकता। न साक्षी में भेद है और न अधिष्ठान में भेद है। जो साक्षी है वही अधिष्ठान है, जो अधिष्ठान है वही साक्षी है। अच्छा देखो, आत्मा में आपको आकाश की प्रतीति हो रही है कि नहीं? आकाश माने पोल समझ लो, ये पोल जो है ये आपको आत्मा में प्रतीत हो रहा है। तो पोल आत्मा में प्रतीत हो रहा है कि आत्मा पोल में प्रतीत हो रही है? तो आत्मा में ये पोल प्रतीत हो रहा है ना, माने मुझ में ये आकाश प्रतीत हो रहा है, तो आकाश का अधिष्ठान मैं हूं, न कि मेरा अधिष्ठान आकाश है। बोले मैं मर जाऊंगा तो ये आकाश तो दुनिया में फिर भी रहेगा ही, ये धरती फिर भी रहेगी। अरे भाई आप इतने बड़े हो कि ये धरती पाताल आकाश सब जितना भी है ये सब आप में ही अध्यस्त है, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है नारायण। क्या होगा जब हम नहीं थे तब क्या होता था, जब ये शरीर नहीं था तब भी तो संसार में कुछ होता ही था। और अपनी तरफ तो एक वो बोलते हैं ना, आप मरे जग पर लो, अगर आपा मर गया तो संसार का प्रलय हो गया, आप मरे जग पर लो, गांव की बोली है। तो आप अगर मर गए तो संसार का प्रलय हो गया ना, अब दुनिया में क्या होगा, जब आप ही नहीं रहोगे तो कुछ भी हुआ करो, कोई देखने आ रहा है अरबों की संपत्ति, एक महिला अपने कुत्ते के नाम लिख गई नारायण, इंग्लैंड में अखबार में निकला था, अरबों की संपत्ति, कोई नहीं मिला तो कुत्ते के नाम, अब उसने सोचा था कि अरबों की संपत्ति कुत्ते को मिलेगी, अब उस कुत्ते को पालने के लिए लोगों में होड़ लग गई, क्योंकि जिसके पास वो कुत्ता जाएगा उसी के पास वो संपत्ति रहेगी। तो दुनिया तो इतनी अजीब विचित्र है कि इसमें कुछ भी होता रहता है। आप जितना कमा कर रख जा रहे हो किसके लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख कर जा रहे हो ना, लेकिन बाल बच्चे उसका प्रयोग करेंगे ये इसकी गारंटी नहीं है। प्रयोग कोई करे किसी न किसी के प्रयोग में आएगी। आप स्वतंत्र रहो, स्वच्छंद रहो, निर्भय रहो, ये वेदांत का अंतिम यही है। अभयम वही जनक प्राप्तो से, याज्ञवल्क ने कहा हे जनक अब तुम अभय पद को प्राप्त हो गए। अगर वेदांत सुनकर के विचार करके निष्ठा प्राप्त करके यदि निर्भयता नहीं आती है तो अभी वेदांत फलित नहीं हुआ है। अभी कहीं ना कहीं हम शरीर में ही बैठे हैं, चाहे स्थूल रूप से बैठे हो चाहे सूक्ष्म रूप से बैठे हो। देखो ऐसे बोलते हैं, मान लो कोई रोग आ गया शरीर में, बोले कोई ना कोई हमारा प्रारब्ध ऐसा होएगा जिसका फल हम भोग रहे हैं। तो आप करता हुए कि नहीं, पहले आपने कुछ किया था तब ना भोग रहे हो, तो आप कर्ता भी हो गए और अब भोग रहे हैं तो वर्तमान में भोगता भी हो गए और कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं। तो ये विरोधाभास जो है ये जीवन में से निकलने चाहिए ना, तब तो ज्ञान होएगा, तब तो निष्ठा होएगी। तो नेह नानास्ति किंचन, न साक्षी में कोई भेद है न सर्वाधिष्ठान में कोई भेद है। ये महाराज जी तो कहते थे कि ये अधिष्ठान शब्द भी प्रपंच की सत्यता का संस्कार होने के कारण श्रुति इसका प्रयोग करती है, वरना अधिष्ठान कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रतीति का अधिष्ठान जब मैं हूं तो सब कुछ प्रतीति ही है, और प्रतीति के अतिरिक्त और है क्या। बोले ये माइक है, बोले जी हां माइक है, ये प्रतीति मुझको हो रही है। पकड़ना बात को, क्या माइक है, बोले माइक है ऐसी प्रतीति मुझको हो रही है। आपके अलावा प्रतीति सिद्ध ही नहीं हो सकती है नारायण, कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती है। तो इसलिए अधिष्ठान चाहे बोलो और चाहे ना बोलो, वो तो वही अधिष्ठान है, जो साक्षी है सो ही अधिष्ठान है। इसीलिए जो साक्षी है सोई ब्रह्म है, इसमें अलग से बोलने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप अपने को ब्रह्म अनुभव नहीं करते हो तो बोले मृत्यु हो समृत्युम गच्छति, तो फिर आपका जन्म मरण भी निश्चित है। बोले हो जाने तो कोई बात नहीं है, तो ठीक है मर करके कहां जाओगे, बोले जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। कोई गाना गाते हैं लोग, जिधर भेज देगा उधर चले जाएंगे। अरे तो कौन भेज देगा? भगवान का ऐसा डिक्टेटर है कि चांद जिधर को भेज दे, जैसी आपकी वासना है वैसी उसी दिशा में आप जाओगे। एक आदमी था तो बैठा था दुकान पे, तो एक बकरा आया, बकरा आके मुंह मारने लगा उसकी दुकान में जो सामान रखा था उसमें, तो उसने डंडा उठाकर मार दिया। उधर से नारद जी महाराज जा रहे थे, उनके साथ एक चेला भी था, तो नारद जी को हंसी आ गई। चेला ने कहा, गुरु जी कैसे हंसी आई? अरे बोले छोड़ो, नहीं महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हो, कोई ना कोई बात तो आपने देखी होगी। बोले देख, ये जो बकरा है ना, ये इस आदमी जो बैठा है इसका बाप है। पहले जन्म में ये इसका बाप था नारायण। तो मैंने इससे बहुत तेरा कहा कि भगवान का भजन कर, नहीं तो तेरा पुनर्जन्म नहीं कटेगा। ये कहता रहा अब करेंगे तब करेंगे, ये हुआ वो हुआ, आखिर में फिर मैंने कहा कि बकरा बनेगा, बलि का बकरा, जहां तेरी आसक्ति है वहीं आएगा। तो बोले बकरा बन जाऊंगा कोई बात नहीं। तो अपने लड़के से ये कह के गया कि मैं, नारद जी कह गए कि बकरा बनूंगा, तो जब मैं मुंह मारूं तो तू मुझे ऐसा डंडा मारना कि मेरे प्राण निकल जाए। अब वो तो उसने कह दिया, अब बकरा बनी गया वो। अब वो तो ये समझ के मुंह मार रहा था कि मेरी दुकान है ये दुकान तो मैंने बनाई थी। नारायण वो तो अपनी दुकान समझ के मुंह मार रहा था, और बेटे ने उठाया डंडा। अब इतने बकरे हैं, किसको समझे कि ये मेरा बाप है। तो उसने उठाया डंडा, तो बोले कि अब चेला ने कहा, महाराज इसके कल्याण की कोई उपाय करो। तो जब बकरा दूसरी तरफ को आ गया तो उसके पास जाकर बोले, अब तो भजन कर ले। बोले महाराज अभी तो इसकी बहुत मुझे सेवा करनी है, इसको कोई होश नहीं है। इसने जो है इतना अन्न इकट्ठा कर रखा है अपने गोदाम में, अब वहां चूहे जो है इसका नाश करते रहते हैं इसके गोदाम के अन्न का, अब मुझे उसकी रखवाली करनी है। बोले ठीक है, तो जा तू बिल्ली बन जा। अब वो बिल्ली बनकर उस गोदाम में रहने लगा, और वो फिर नारद जी पहुंच गए कि अब तो भजन कर ले। ये आसक्ति ऐसी है नारायण कि कितना भी समझाओ ये कटती नहीं है। एक दफे कड़ा जी करके मृत्यु से मृत्यु मापन होती, कड़ा जी करके ये सोच लो कि हमें तो इसी जीवन में मुक्त होना है, अगला जीवन हमें लेना ही नहीं है। जबरदस्ती की बात नहीं है, नहीं लेना है ऐसा कुछ करोगे तभी नहीं लोगे, नहीं तो लेओगे ही जरूर लेओगे। वो तो जहां वासना पड़ी होती है वहीं जाता है मनुष्य। आज आप जहां भी हो वो पूर्व वासना का परिणाम है, और आगे जहां आप रहोगे वो इस जन्म की वासना का परिणाम होगे, और अभी तो पुराने जन्मों के वासनाएं भी पड़ी हुई हैं संचित में, पता नहीं कहां की वासना जोर मार जाए। तो एक महात्मा कहते थे कि संचित को तो लगाओ आग, तत्व ज्ञान के द्वारा संचित को तो लगाओ आग, और प्रारब्ध को ले भोग, और करने में रहो सावधान, जिससे उसका विपरीत संस्कार न पड़े। नहीं तो मृत्यु से मृत्युम गच्छति या इह नानेव पश्यति, नाना के समान भी यदि देखोगे यहां जहां पर के नाना तो है ही नहीं, तब भी आपके जन्म मृत्यु बचने कटने वाले नहीं है, जरूर होगा। तो यहां महाराज जी ने कुछ प्रेक्षा की है, वो जरा अच्छी हंसीदार है तो आपको सुना देते हैं। बोले एक बालक था गांव में, अनाथ था, उसका कोई घर में था नहीं। तो एक आदमी ने कहा इसका अपहरण कर लें, इसको बेच देंगे। फिर तो वो बन के आया, बोले कि चल मेरे साथ चल, तुझे तो यहां भोजन नहीं मिलता है। तो बोले आप मेरे कौन होते हो जो मैं आपके साथ चलूं? बोले मैं तेरा नाना होता हूं। अब ये नानेव पश्यति के ऊपर उत्प्रेक्षा है। बोले मैं तेरा नाना होता हूं। बोले अच्छा नाना जी हो आप? हाँ चलिए। अब वो चल दिया। अब गांव के एक बुजुर्ग ने देखा कि किसके साथ जा रहा है। अरे बोले सुन किसके साथ जा रहा है तू? बोले ये हमारे नाना जी आए, इनके साथ जा रहा हूं। बोले तेरे नाना तो कब के मर गए? तेरा तो कोई नाना ही नहीं है, ये कोई ठग है। अब वो जैसे ही उसने कहा कि ये ठग है तो वो ठग भागा वहां से। अब वो बच गया जा रहा है। तो ये जो नाना तो देखते हैं संसार में, तो अब कोई बुजुर्ग जो है, कोई महापुरुष, कोई संत कहता है कि ने नाना अस्ति किंचन, यहां नाना नहीं है नारायण, तो बच जाओगे, और नहीं तो ये नाना ठग के ले जाएगा, अपहरण कर ले जाएगा। मनसै वेदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचनो, मृत्योः समृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति, अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ये जो आत्मा है ये कहां मिलेगा, चलो ढूंढे इसको। बोले मध्य आत्मनि तिष्ठति, ये शरीर के भीतर ही है। यहां मध्य का अर्थ सेंटर भी होता है और मध्य माने मैं भी होता है, इनसाइड। वो पंजाबी लोग बोलते हैं ना, शरीर दे विच, शरीर दे विच। तो अब हिंदी में तो विच माने बीच होता है, सेंटर को बोलते हैं बीच, और वो बोलते हैं शरीर दे विच माने शरीर में कहीं भी हो तो उसको विच बोलते हैं। तो यहां मध्य का मतलब ये नहीं है कि शरीर के सेंटर में ये आत्मा रहता है, शरीर दे विच रहता है, इसी शरीर में रहता है ये आत्मा। कहां रहता है? बोले है तो ये छोटा सा अंगुष्ठ प्रमाण है, इसका अंगूठे के बराबर है। तो बोले छोटे बच्चे का अंगूठा कि बड़े आदमी का अंगूठा, किसका अंगूठा? तो बोले ये अंगूठा अंगूठा नहीं है नारायण, ये तो गांठ को अंगूठा बोलते हैं, ग्रंथि के रूप में रहता है। अब वो ग्रंथि कहां है कि मध्य में है? तो अब या तो हृदय में मान लो, हृदय चक्र में मान लो, या इस चक्र में मान लो, या भ्रू मध्य में मान लो, सहस्रार में मान लो, और क्या नीचे कौन से चक्र हैं, मूलाधार में मान लो। तो जितने भी ये सात चक्र हैं, कहीं भी मान लो, है सब शरीर के भीतर ही, और अंगुष्ठ प्रमाण है माने बहुत छोटे रूप में ही रहता है। आगे शायद पहले आ चुका है, मध्य वामनासीनम, वामन है ये, वामन बहुत छोटे रूप में रहते हैं। यहां अंगूठा भी छोटे के अर्थ में ही है। अंगूठे के बराबर ये पुरुष जो है, ये मध्य आत्मा में माने शरीर में रहता है, और ईशानो भूत भव्यस्य, ये संपूर्ण भूत भविष्य का ईशान है, नियामक है। न ततो विजुगुप्सते, जो इसको वहां जान लेता है वो फिर अपने शरीर की रक्षा करने की चिंता नहीं करता, यही आत्मा है। अब इसकी व्याख्या कल करेंगे। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।